ओम शांति। हम सभी भाग्यशाली आत्माएं हैं जो बाबा हम सभी की झोली ज्ञान रत्नों से भरना चाहता है, और ज्ञान रत्नों की झोली भरने के लिए अपने ही बाबा के महारथी भाई बहनों के को हम सभी के बीच में उपस्थित कर लेता है। ऐसे ही आज हम सभी के बीच में ब्रह्मा कुमार छोटे लाल भाई उपस्थित है। हम सभी एक ताली से, एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। छोटे लाल भाई ज्ञान में 38 वर्ष से चल रहे हैं। बाबा के बेहद घर में मधुबन में 33 वर्षों से समर्पित है। वर्तमान समय मधुबन में सिक्योरिटी और रात्रि क्लास प्रोग्राम बनाने की सेवा करते हैं। ज्ञान मिला फरीदाबाद हरियाणा से और वहीं से मधुबन में समर्पित हुए। भारत और नेपाल में बाबा ने अनेक स्थानों पर योग भट्टी कराने की सेवा में भेजा है। लौकिक घर राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव दारोडा है। लौकिक घर में गीता पाठशाला चलती है। लौकिक परिवार में 4 बहनें ज्ञान में चलती है और 2 बहनों के घरों में गीता पाठशाला चलती है तथा 3 बहनों की 5 लड़कियां बाबा के सेंटरों पर सेवा में समर्पित है। ब्रह्मा कुमारी बनाना माना आप देखो उसके लिए कितनी मेहनत लगती है, तो ये सारा 5 ही बहन ने जो सेवा में समर्पित है उसका टोटल श्रेय छोटे लाल भाई को जाता है। इसलिए भी स्व उन्नति और त्रिव्य पुरुषार्थ हम ब्राह्मण भाई बहनों में कैसे आए, कैसे करें, उसके बारे में हमें अवगत कराएंगे, प्रकाश डालेंगे ब्रह्मा कुमार छोटे लाल भाई। ओम शांति।
ओम शांति। प्यारा बाबा, वर्तमान समय हम सभी को एक ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में देखना चाहते हैं जिसके द्वारा हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकें। क्यों? क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता हम बच्चों के द्वारा होनी है। और कब होगी? जब हमारी स्थिति बाप समान निरंतर योगी की अथवा फरिश्ते बनेंगे। तो ऐसी एक श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? वैसे तो आप अपनी अपनी रीति से सब पुरुषार्थ करते ही हैं, लेकिन हम कुछ एक बातें आप सभी को अपने अनुभव के आधार से बताएंगे ताकि आप भी उनका अपने जीवन में प्रयोग कर चलें, तो निश्चित रूप से वैसी स्थिति बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप सब ज्ञान योग करते तो हैं ही, लेकिन जब भी किसी के सामने कोई समस्या परिस्थिति आती है तो कईयों के पुरुषार्थ की गाड़ी वहां खड़ी हो जाती है। फिर प्रश्न उठता है क्या करें, कैसे करें, ये करें या वो करें। क्यों सब कुछ होते हुए भी क्यों कुछ काम नहीं आता है? तो वहां ज्ञान भूल जाता है, मर्ज हो जाता है। तो अब तक हमने जो भी कुछ ज्ञान सुना है, योग किया है, अभी आवश्यकता है उसका अपने जीवन में प्रयोग कर चलने की। वर्तमान समय भी और आगे आने वाले समय को देखते हुए हमें इस बात की बहुत बहुत आवश्यकता होगी कि जब एक तरफ बाबा की प्रत्यक्षता होगी, दूसरी तरफ अनेक हलचल की परिस्थितियां होंगी, तो उनमें रहते हुए हम कैसे अपनी स्थिति को उनके प्रभाव से मुक्त रख सकें, एक अचल अडोल स्थिति बनाकर रख सकें। वो तभी संभव हो सकेगा जब पहले से हमने अपने जीवन में ज्ञान और योग का प्रयोग किया हुआ होगा। तो आप अनेक हलचल की परिस्थितियों में उनके प्रभाव से मुक्त रहकर एक प्रभाव मुक्त स्थिति बना सकेंगे। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति जिसके लिए बाबा के महावाक्य हैं कि यदि स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, परिस्थितियां आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। इतनी ऊंची श्रेष्ठ महान है वो स्व स्थिति की सीट। तो कैसे सदा ही हम अपनी श्रेष्ठ स्व स्थिति में रहें ताकि अनेक हलचल की परिस्थितियों में रहते हुए भी निरंतर विजयी बन के आगे बढ़ते रहें। तो एक श्रेष्ठ स्थिति बनाने का आधार बनते हैं हमारे मन के श्रेष्ठ विचार, पॉजिटिव विचार, पावरफुल विचार। यदि हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बना दें तो निश्चित रूप से हम जो चाहेंगे वैसा बनना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले मन में किसी बात के लिए संकल्प आता है। यदि वो संकल्प हमारा पॉजिटिव पावरफुल है तो वैसी स्थिति बनेगी, यदि वो व्यर्थ नेगेटिव है तो उसका प्रभाव वैसा पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने हम सभी को कहा हुआ है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो ये सभी हम अपने आप से पूछ लें, ध्यान दें अपने आप पर कि क्या जो मैं बनना करना चाहता हूं या चाहते हूं मैं वही सोचते हूं, या कई बार जो नहीं चाहते वो भी सोच लेते हैं। क्योंकि हम जो भी कुछ संकल्प कर रहे हैं उस सभी का हमारे मन और शरीर पर वैसा ही असर पड़ रहा है। एक छोटा सा अनुभव, मैं हर बात के पीछे एक अनुभव जरूर सुनाऊंगा ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। नहीं तो ज्ञान की योग की क्लास करने के बाद भी पूछते हैं कि ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा या नहीं होगा, है? इसलिए ऐसा प्रश्न नहीं उठे किसी के मन में कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। तो एक छोटा सा अनुभव, एक भाई मिले, कहा कि भाई जी मैं 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूं और मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। पूरा परिवार ज्ञान में चलता है, बच्चे भी, लेकिन समस्या क्या है जी कि हमारे को हमारे ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है। तो हमने पहली बार ऐसा सुना कोई ज्ञानी ज्ञानी के साथ ऐसा व्यवहार करे। चलो अज्ञानी करे तो एक बात अलग हो जाती है। तो दो मिनट बाबा से कनेक्शन जोड़ा और बाबा को याद कर कहा बाबा ये आत्मा ऐसे से पूछ रही है, क्या जवाब दिया जाए। तो बाबा से टचिंग मिली, बच्चे इनसे पूछो कि आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो पूछा उससे, भाई याद करो आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो एक मिनट सोच के वो भी कहता है कि हाँ, हम सोचते थे कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें तो कुछ पैसा जमा करके रख लो। तो जो सोचा वही हो गया उनके साथ। तो ये बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है, हम इस पर ध्यान दें। हम जो बनना करना चाहते हैं हम वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें। क्योंकि हमारे एक एक संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, अर्थात वैसा बनने करने की शक्ति है। जो भी हम संकल्प कर रहे हैं जैसा भी, तो वैसा होता जाएगा है? क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप पहुंच रहे हैं वैसे वैसे हमारे एक एक संकल्प में वो शक्ति पावर आती जा रही है सिद्ध होने की। तो इसलिए हम वही सोचें जो हम बनना करना चाहते हैं। तो कैसे एक संकल्प हमारे मन और शरीर पर असर डालता है, बहुत कम लोगों का ध्यान इस बात की ओर जाता है। यदि सारे दिन में चेक कर देखा जाए तो हमारे मन में क्या क्या संकल्प चलते हैं तो उनमें पता चलेगा आपको कि ज्यादातर व्यर्थ नेगेटिव साधारण विचारों की मात्रा अधिक होती है और उसकी भेंट में पॉजिटिव पावरफुल विचारों की मात्रा कम होती है। तो उसको हमें बढ़ाना होगा। तो कैसे एक संकल्प हमारे मन और शरीर पर असर डालता है, सुनिए एक प्रैक्टिकल अनुभव। एक भाई थे, उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उनको कैंसर था, अंतिम स्टेज में पहुंच गया और उनको डॉक्टरों ने कह दिया कि आप केवल 4 महीने के ही मेहमान हो, इससे ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, जो कुछ करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस संकल्प को अपने अंतर मन में ही नहीं आने दिया। डॉक्टर की बात सुनकर उन्होंने एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है और मुझे इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है। तो ये नियम है कि हम सभी का शरीर बॉडी जिन सेलों से बना है वो हर एक व्यक्ति के बॉडी के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं। डॉक्टर भी इस चीज को मानते हैं। तो नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है, जैसा हम संकल्प कर रहे हैं वैसे बॉडी में नए सेल्स बनते जाते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं। तो उसने जब ये संकल्प किया कि मुझे जिंदा रहना है, भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है और कंप्लीट इस कैंसर की बीमारी से मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए और इस आधार से जो उसके शरीर में कैंसर के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे करके खत्म होते गए और आज इस बात को 10 साल हो गए हैं, वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा की सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। तो सोचिए आप एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति है। यदि हम यह निश्चय कर लें कि मुझे बाप समान निरंतर योगी फरिश्ता बनना ही है, दुनिया की कोई शक्ति हमको वैसा बनने करने से रोक नहीं सकती। जो हम बनना करना चाहते हैं वो एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प, शक्तिशाली संकल्प अमृत वेले आंख खुलते ही अपने अंतर मन में भर दो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि आपको किसी भी कार्य में सफलता पानी है, पुरुषार्थ में, कारोबार में, धंधे दोरी में और किसी प्रकार की है, तो उठते ही वो ये 9 बार ये संकल्प कर लें वाले, और दिन में भी रात को सोते समय 3 बार एक दिन में, लेकिन अमृत वेले जरूर करना, तो निश्चित रूप से आप वैसे बनते जाएंगे, वो कारोबार वैसा होगा। सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। एक भाई का फोन आया, कहने लगा भाई जी मैंने 5 साल से बहुत बिजनेस चेंज करके देख लिया, मेरे को सब में घाटा घाटा ही होता जा रहा है और मेरे को बड़ा टेंशन हो गया, मेरा योग नहीं लगता है और वही संकल्प विकल्प चलते हैं, मैं क्या करूं, और मेरा दिल करता है मैं आत्महत्या कर लूं। मैंने कहा देखो ऐसा करने से कोई आपकी समस्या हल नहीं हो जाएगी, ये काम भूलकर भी नहीं करना, आप एक प्रयोग करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उठते ही 9 बार ये संकल्प कर लो, और दिन में भी और रात को सोते समय भी एक दिन में 3 बार 21 दिन तक रोजाना ये संकल्प करो और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। पहले दिन उन्होंने विचार संकल्प किया तो कुछ पता नहीं चला, दूसरे दिन किया थोड़ा फायदा, तीसरे दिन और फायदा, चौथे दिन और फायदा, ऐसे करते करते लगभग इस बात को आज 3 महीने होने को आए, 3 महीने में उनको 70% प्रोग्रेस है। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे, इसलिए इस बात को हम अपने गांठ बांध लें तो हम वही सोचें जो हम बनना करना चाहते हैं, बाकी सब विचारों से अपने आप को हम मुक्त करते जाएं तो निश्चित रूप से वैसे बनते जाएंगे। दूसरी बात, एक श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम अमृत वेले आंख खुलते ही कोई न कोई एक सोमान अपने अंतर मन में भर दें और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करें। मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूं, अवतरित हुआ फरिश्ता हूं, जो ऐसा समान जिसकी स्मृति आते ही आपको नशा चढ़े, शक्तियों की अनुभूति हो और उसको मन को सारे दिन में काम दे दो, उसी नशे में रहो, उसका अभ्यास करके चलो। तो स्वमान से हमारे विचार महान बनते हैं और जहां विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना सहज और सरल हो जाएगा। स्वमान से स्वयं ही स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है, दूसरों से भी सम्मान मिलता है। स्वमान के अंदर वो शक्ति है कि कैसे भी अभिमानी आत्मा के अभिमान को खत्म किया जा सकता है। स्वमान के आधार से हमारे विचारों में वो शक्ति, वो गुण, वो विशेषताएं, महानताएं आती चली जाती हैं। तो जब किसी भी स्वमान की सीट पर हम स्थित होकर चलते रहते हैं तो हमारी स्थिति से वैसे वाइब्रेशंस फैलते हैं और लोगों को वैसी अनुभूतियां होती हैं। जब देखो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने साक्षात्कार करा दिया, बता दिया कि तुम ही श्री कृष्ण बनने वाले हो, तो ये बाबा को निश्चय हो गया, पता चल गया, तो बाबा ने उस बात को अपने मन में स्वीकार कर लिया, समा लिया कि मैं ये बनने वाला हूं। तो फिर बाबा बाबा नहीं, अनेक आत्माओं को बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा, बाबा श्री कृष्ण दिखाई देने लगे, क्योंकि बाबा ने उस बात को मन से स्वीकार कर लिया। तो हम भी जो बनना करना चाहते हैं वो स्वरूप, वो स्वमान, वो एक पिक्चर, वो एक चित्र अपने सामने इमर्ज कर लें कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये करना है, तो वो गुण विशेषताएं महानताएं हमारे जीवन में आती चली जाएंगी। स्वमान के अंदर बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों में वो शक्ति है, पावर है, जिसके द्वारा एक नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता है वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। आप अपने शारीरिक कर्म भोग को भी स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन से जीत सकते हैं। इतनी बड़ी शक्तियां हैं बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों में। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। एक भाई मिले, कहने लगे, एक भाई जी मेरे सामने एक समस्या आ गई है और मैंने एक जमीन की प्लाट के लिए सौदा किया था 4 लाख रुपए में। बातचीत होगी, सौदा फाइनल हो गया, कहा फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। मैं पैसे लेकर गया और जब कागज सब तैयार हो गए तो रजिस्ट्री कराने की बात आई, तो बोल ठीक है पैसे दे दो, रजिस्ट्री करा देते हैं। तो मैंने पैसे दे दिए। पैसे लेकर वो व्यक्ति बदल गया, कहा आपको ये प्लाट नहीं, हम ये प्लाट देंगे। मैंने कहा कि नहीं, बात तो इसकी हुई थी, मेरे को तो वही चाहिए। बोल वो नहीं मिलेगा, कोई मौके की जगह होगी। तो बोल ठीक है, आपको नहीं देना हो तो मेरे पैसे वापस कर दो। बोल कल ले जाना। कल गया 5 दिन बाद, 5 दिन बाद गया 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया महीना बाद। ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे वापस नहीं करा। तो उसको बड़ा टेंशन हो गया, योग नहीं लगे, वही बातें बुद्धि में घूमे। तो मैंने कहा आप एक प्रयोग करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, इन दोनों स्वमानों का अभ्यास करते रोजाना 1 घंटा 21 दिन तक योग करो। और जब योग करें तो ये संकल्प करना कि ये मेरे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं जिसने मेरे पैसे लिए हैं। और जब योग करें तो ये संकल्प करना कि ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए है। ये संकल्प जरूर करना तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा। और बताना इसका रिजल्ट क्या रहेगा। वो गए घर जाकर, उन्होंने ऐसा प्रयोग करना शुरू किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से सर्वशक्तियां लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं जिसने मेरे पैसे लिए हैं और ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए, इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए। ऐसे वो करता गया योग। 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति उसके घर पे आता है और 4 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो आप सोचिए, जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन से कराया। इतनी बड़ी शक्तियां और स्वमान बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों से कैसे हम अपने शारीरिक कर्म भोग पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक माता को छाती में कैंसर की गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने चेक कर बता दिया कि माता जी ये कैंसर की गांठ है और फर्स्ट स्टेज में इसका ऑपरेशन करा लो, नहीं तो आगे चल के आपके लिए खतरा बन सकती है। लेकिन माता जी का संकल्प नहीं था, माता जी ज्ञान में चलती थी। लेकिन घर वालों ने बातचीत करके और फिक्स कर दिया 5 दिन बाद ऑपरेशन होना है। अब माताजी के पास 5 दिन थे तो माताजी ने धुन लगा दी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा और सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर इस गांठ के ऊपर डाल रही हूं और बाबा मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, आपने इसको ठीक करना। ऐसे अभ्यास करते 2-2, 3-3 घंटा बैठ के योग करती और इसी स्वमान को उसने 1008 बार लिखा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो लिखने से क्या होगा, जब कोई बात हम हाथ से लिखेंगे तो मन के अंदर भी तो विचार चलेंगे ना। तो बाबा ने कहा जैसा तुम सोचोगे वैसा बनोगे। तो उसके अंदर उस जब लिखा उसने तो वो शक्तिशाली विचार पावर आती चली गई उनके आधार से और उसकी स्थिति बहुत शक्तिशाली बन गई। तो जब शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर हम कोई भी संकल्प करते हैं तो उसमें सिद्ध होने की पावर आ जाती है। तो ऐसे उसने 5 दिन तक 1008 बार यह स्वमान लिखा और रोजाना 2-2, 3-3 घंटा बैठ के इसी स्वमान का अभ्यास करते योग किया। 5 दिन के बाद 6ठे दिन ऑपरेशन की डेट फिक्स थी तो माताजी गई हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए। जब ऑपरेशन करने की बात आई तो डॉक्टर के मन में विचार आता है कि एक बार मैं फिर से चेक कर देख लेता हूं गांठ की क्या पोजिशन है। तो डॉक्टर चेक कर देखता है तो डॉक्टर माताजी को कहता है कि माताजी कोई आपको तो कोई गांठ है ही नहीं, मैं किसका ऑपरेशन करूं, खत्म। तो सोचिए साधारण बात तो नहीं है। तो बाबा द्वारा दिए हुए सुमनों में वो शक्तियां हैं जिनके द्वारा एक असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। तो आप में से भी अनुभव सुनने के बाद कईयों को विचार आता होगा, क्योंकि छोटी मोटी समस्या परिस्थितियां तो कईयों के सामने होती हैं, तो आप भी प्रयोग करके देखें, निश्चित रूप से प्रयोग करें। लेकिन इस तरह से योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए 5 बातों की आवश्यकता है। उन 5 बातों को हम सामने रखते हुए योग का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, नहीं तो कभी सफलता असफलता दोनों हो सकती हैं। पहली बात, एक दिन का हमारा योग का चार्ट कर्म करते बैठ के टोटल मिलाकर कम से कम 4 अथवा 5 घंटे का तो अवश्य होना ही चाहिए, अमृत वेले से रात्रि तक 4 या 5 घंटे योग का चार्ट एक दिन का। दूसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना बहुत जरूरी है। एक ही जगह बैठ के रोजाना योग करें, एक ही समय बैठ के रोजाना योग करें, जिस समय भी आपका योग पावरफुल और अच्छा हो। तीसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए जैसी समस्या जैसी परिस्थिति वैसे ही स्वमान में स्थित होकर हम योग का प्रयोग करें। कहीं मान लो दुख दर्द की समस्या है तो मैं मास्टर दुखहरता सुख करता हूं, कहीं शक्ति की आवश्यकता है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कहीं शांति की जरूरत है तो मैं पीस हाउस आत्मा हूं। जैसी परिस्थिति वैसे स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें। चौथी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए हमारे मन की निस्वार्थ भावना, शुभ भावना, कल्याणकारी भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। और पांचवी बात है, पावरफुल स्थिति का होना जरूरी है, शक्तिशाली स्थिति हो, पावरफुल स्थिति हो। इन 5 बातों को सामने रखते आप योग का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अगली पॉइंट, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम व्यर्थ से कंप्लीट मुक्त बने, सदा ही समर्थ विचारों का स्वरूप बन के चले, क्योंकि व्यर्थ बहुतों के सामने बहुत बड़ी समस्या है जिसमें बहुत सारा समय और शक्तियां व्यस्त चली जाती है और स्थिति साधारण हो जाती है। क्यों व्यर्थ चलता है? जब मन को हम फ्री छोड़ देते हैं। आज भी कोई एक बहन पूछ रही, बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं, जो बात समस्या सामने उसको ही हम सामने रख लेते हैं, ज्ञान योग एक तरफ रह जाता है। तो मन को कभी भी खाली फ्री नहीं छोड़े, हमेशा कोई न कोई ज्ञान के पॉइंट का मनन चिंतन स्वमान का अभ्यास करते उसमें बिजी रहे। जिनको पुरुषार्थ में आगे जाना है वो मनन चिंतन, स्टडी, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, अभ्यास करना, ये सब चीजें बहुत बहुत जरूरी है। कुछ सूक्ष्म मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अपने आप से कुछ होने वाला नहीं है। क्लासेस तो आप बहुत सुन लेंगे, योग भी कर लेंगे, लेकिन अगर आपने उसका प्रैक्टिकल प्रयोग नहीं किया, अपने जीवन में प्रैक्टिकल अप्लाई करके नहीं चले तो परिवर्तन होने वाला नहीं है। सुनने से ही सब कुछ नहीं होगा। अगर जीवन में प्रोग्रेस चाहते हैं तो उसके लिए परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, और परिवर्तन तब होगा जब आप वैसा प्रैक्टिकल करेंगे। तो करने से कुछ प्राप्ति, अनुभूति, परिवर्तन होगा, प्रोग्रेस होगी। तो उसके लिए आप अभी से ही ये 3 अभ्यास रोजाना करें। जिनको पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, निरंतर योगी बनना है, अपने योग को पावरफुल बनाना है, ये 3 अभ्यास अभी से ही रोजाना सभी करें। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। यहीं बैठे बैठे ही आप अभ्यास कर सकते हैं, यहीं 50 से ज्यादा लोग बैठे। दूसरा, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है, 5, 10, 15 मिनट के बाद, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए अशरीरी बन जाओ, निराकारी बन जाओ, बिंदु बन जाओ, कम से कम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना टाइम हो, लेकिन 50 बार सारे दिन में कम से कम, ज्यादा जितनी बार कर सको। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझकर चलो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखो। मैं अवतरित हुआ फरिश्ता हूं और ये सभी फरिश्ता बनने वाली महान आत्माएं हैं, इस नजर से सबको देखकर चलो। अगर ये तीनों अभ्यास आप विधि पूर्वक कर लेते हैं तो उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि वहां आपको योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, योग लगा रहेगा। जब भी योग करने बैठेंगे तो बहुत ही जल्दी मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगा और एक पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे। ऐसे घरों में माताएं भी हैं, जब भी 1-2 मिनट का टाइम मिले बिंदु बन जाओ। घर में रहते हुए सबको देखो, साकार में जब बाबा थे तो कितना अभ्यास किया बाबा ने, फलाना आत्मा है, फलानी यशोदा आत्मा है, वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। तो इससे क्या होगा, हमारा देह भान टूटता जाएगा और आत्म अवमानीपन की स्थिति नेचुरल वे में रहने लगी। और कर्मों में आपने अभ्यास कर लिया तो फिर पुरुषार्थ को तीव्र करना या स्थिति को पावरफुल बनाना सहज और सरल हो जाएगा। और जब तक आपका योग पावरफुल नहीं बनेगा तब तक संस्कारों का परिवर्तन नहीं हो पाएगा, विकर्मों का विनाश नहीं होगा। तो अगर आपने जीवन में आगे बढ़ना है, परिवर्तन करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है तो उसके लिए अपने योग को पावरफुल बनाएं, उससे ही संस्कारों का परिवर्तन होगा और उससे ही विकर्मों का विनाश होगा। और योग पावरफुल बनेगा इन तीनों अभ्यास से, सहज तरीका। बातें तो और भी बहुत हैं लेकिन ये केवल 3 अभ्यास ही आप करके चलो तो बहुत ही जल्दी आप पावरफुल योग का अनुभव करेंगे। है तो देखने में शरीर आएगा लेकिन बुद्धि से समझ कर चलना है कि यह आत्मा इस शरीर का आधार लेकर पाठ बजा रही, आंखों से देख रही, मुख से बोल रही, कानों से सुन रही। बुद्धि से हम ये समझ कर, ज्ञान तो है ना हम सभी को, ये बात तो उसका प्रैक्टिकल में अभ्यास, ज्ञान है लेकिन अभ्यास नहीं करते हैं इसलिए उस स्वरूप उसका स्वरूप नहीं बन पाते, इसलिए मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाता है। तो वहां फिर थोड़ा समय तो अच्छा योग लगेगा और उसके बाद थोड़े समय के बाद फिर वही विचार, जिनसे मिले हैं, जो देखा है, जो कर्म किया है, वही बात सामने आएगी, बाबा की बुद्धि योग टूट गया, होता है ना ऐसा। क्यों? क्योंकि जिस समय हमने वो कर्म किया, जिस व्यक्ति से मिले, उस समय हमारी स्थिति आत्म अवमानीपन की नहीं थी, देह भान में थे, इसलिए उस बात का, उस व्यक्ति का प्रभाव हमारी स्थिति पर आ गया और जब योग में मन शांत हुआ तो उसने हमें डिस्टर्ब किया। इसलिए यहां सुनते हुए भी आप ही अभ्यास करें, मैं आत्मा बाबा का दिया हुआ ज्ञान फलानी आत्मा के द्वारा सुन रही हूं, या मुरली सुनते हुए बाबा के महावाक्य फलानी आत्मा के द्वारा सुन रही हूं मैं, सब कुछ करते ये स्मृति अगर हमें रहेगी तो आप सहज योग का अनुभव करेंगे। अगली बात, सृष्टि स्थिति बनाने की बात चल रही थी, व्यर्थ की है। हाँ तो देखो, बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं कि यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। तो कैसे, जहां व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल होती है। सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव, कभी भी कैसी भी समस्या परिस्थिति आ जाए लेकिन कभी भी व्यर्थ के विचारों को नहीं आने दें। तो एक भाई मिले हमारे से, कहा कि भाई जी मेरे को एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और मैं पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा हूं तो मुझे, मेरे मन में थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल है, पता नहीं क्या प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, तो मेरे को थोड़ा सा आप गाइड करेंगे मुझे क्या करना चाहिए। हमने उसे बताया कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो याद किया है, वही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। दूसरा, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीसरा इस नहीं सॉरी दूसरा इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, इस निश्चय के साथ जाना। तीसरा सफेद कपड़े पहन के और बैज लगा के जाना जो दूर से ही दिखाई, और उसने ऐसा किया। सफेद कपड़े पहन के बैज लगा के मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है और मैंने जो पढ़ाई याद किया है वही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो जहां गया तो वहां दो बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे ही उनका ध्यान इस भाई की ओर गया तो जो कुछ पूछना था वो सब बातें तो एक तरफ रही, सबसे पहला ध्यान उनका बैज पर गया। तो बैज को देख कर कहते, अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो? तो उसने कहा हाँ जी। तो बोल फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोल हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोल हाँ जी। तो बस उसने थोड़ा आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कॉमेंट्री से योग और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में 20 मिनट तक उसने कॉमेंट्री से योग कराया। योग पूरा हो गया फिर भी उनकी आंखें नहीं खुले। फिर 5 मिनट के बाद उसने बोला साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा आप तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न उससे किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? तो बोल मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूं। तो बोले गीत गाकर सुनाएंगे? बोले हाँ जी। तो उसने गीत गा दिया, आप प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अब वो गीत भी ऐसा है तो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 3-4 मिनट का ही गीत है, गीत पूरा हो गया फिर भी उनकी आंखें नहीं खुले। फिर दोबारा 5 मिनट के बाद उसने बोला साहब अभी गीत पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुले। अच्छा आप तो गीत गाना बहुत अच्छा जानते हो। तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। ये है समर्थ संकल्पों की कमाल। इसलिए भले कैसी भी समस्या परिस्थिति क्यों न आए, लेकिन कभी अपने मन में कमजोर या व्यर्थ के विचारों को नहीं आने दें। सदा ही समर्थ विचारों का स्वरूप बन के चले तो निश्चित रूप से जो आप सोचेंगे फिर वही होगा। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम सदा ही अपने मन की भावनाओं को सुश्रेष्ठ कल्याणकारी बनाकर चले। चाहे कोई कैसा व्यवहार हमारे से करे, लेकिन हमारे मन में सदा ही यदि सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना रहती है, तो हमारे मन की शुभ भावनाओं में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो कैसी भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना देंगे। मान लो एक व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार करता है, दुख देता है, तंग करता है, डिस्टर्ब करता है, क्या ऐसी आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना रहती है या बदल जाती है? रहती है शुभ भावनाएं, बदल जाती है। ज्यादातर लोगों की भावनाएं बदल ही जाती हैं। तो देखो ये नियम है, यदि हमारी भावनाएं नेगेटिव हो गई तो जिस भी आत्मा के प्रति हम जैसी भावना अपने मन में रख के चलते हैं, सूक्ष्म में उनके वाइब्रेशन उन आत्माओं तक पहुंचते हैं और उनको पाकर वो आत्मा भी हमारे प्रति वैसी भावना रख के चलेगी जैसा कि हम उसके प्रति रख के चल रहे। तो मान लो हम नेगेटिव भावना रख रहे हैं तो उनके पास भी नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचेंगे और वो भी हमारे प्रति नेगेटिव भावना रखेगी, तो उनकी नेगेटिव भावनाएं हमारी स्थिति को भारी बना देंगे, मन को विचलित करेंगे, योग में एकाग्र नहीं होने देंगे, पुरुषार्थ में विघन रूप बनेंगे। इसलिए कोई कैसा भी व्यवहार हमारे से करे, लेकिन बाबा ने हमको ज्ञान दिया है, उस आधार से ज्ञान और योग के बल से हम अपनी भावनाओं को सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ और महान बनाकर रख सकते हैं। भावनाएं कब बदलती हैं, नेगेटिव होती हैं? एक तो गलत व्यवहार से, दूसरा जब हम किसी की कमी कमजोरियों को देखते हैं, ये तो है ही ऐसे, ये ऐसे करते हैं, इनके अंदर ये कमी कमजोरी है, वहां ज्ञान का हम प्रयोग कर रहे हैं। बाबा के जो भी बच्चे बने हैं वो साधारण आत्मा नहीं, संसार की सबसे हाईएस्ट और होलीएस्ट महान आत्माएं, ये सभी देवी देवता बनने वाली आत्माएं, इस नजर से सबको देखकर चलेंगे तो हरेक की गुण विशेषता महानता ही नजर आएंगे, फिर किसी की कमी कमजोरी देखने में नहीं आएंगे और भावनाएं सबके प्रति शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनेंगे। तो जहां हम अपने मन में सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना रख के चलते हैं तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है, वो कैसी भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है उसके द्वारा। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता है वो शुभ भावना शुभ कामनाओं के पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। सुनिए एक अनुभव। आप में से कई ऐसी माताएं होंगी जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते विरोध करते होंगे, कई ऐसे भाई होंगे जिनके युगल ज्ञान में नहीं चलती रुकावट डालती हैं, या और कोई संबंधी आपको ज्ञान में चलने से रोकता है। तो ऐसी आत्माओं की मनोवृत्तियों को कैसे आप शुभ भावनाओं के प्रयोग से बदल सकते हैं, सुनिए ये अनुभव। एक भाई थे, बाबा के ज्ञान में चलते थे, उनका बड़ा बिजनेस था। तो 3 साल पहले की बात, वो बाबा से मिलने के लिए आए। तो एक दिन ऊपर भी यहां पांडवन में रुकने के लिए आए, तो उस दिन हमारा यहां तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बना है जिसकी मीटिंग चल रही थी सूरज भाई जी के साथ। उनको पता चला तो वो ही पहुंच गए मीटिंग में। मीटिंग पूरी होने के बाद भाई जी से उन्होंने प्रश्न किया कि मेरी युगल बहुत बिगड़ डालती है, मैं क्या करूं। तो भाई साहब ने बताया उनको, देखो अगर आपकी युगल बिगड़ डालती है और उसे आप परिवर्तन करना चाहते हो तो 2 बातों का अभी से प्रयोग कर चलो। क्या 2 बातें? कि एक तो कंप्लीट अपने मन में उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रख के चलो, चाहे वो कितना विरोध करे आपसे। दूसरा, ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। क्या करना है, क्यों करना है, वो मैं बतला रहा हूं कि अमृत वेले हम सभी का अंतर मन शांत और खाली होता है। तो जिस भी आत्माओं को हम शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन देंगे वो उस तक पहुंचेंगे, और उसका अंतर मन शांत और खाली है तो उन्हें सहज ही स्वीकार कर लेगा और फिर वैसा बनना करना हमारे लिए सहज और सरल हो जाएगा। इसलिए ये प्रयोग अमृत वेले करना है। प्रयोग क्या करना है? जिस आत्मा को आप बदलना चाहते हो, परिवर्तन करना चाहते हो, उसको अपने सामने सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर लो और उससे इस प्रकार से शुभ भावना के रूप में बातें करो कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। और वो बात भी उस समय बता दो जिसमें वो विरोध करती थी। ऐसे ये प्रयोग 7 दिन अमृत वेले योग में कर लेना और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता। वो भाई यहां से गए अपने घर, जाकर अमृत वेले उठ के उन्होंने और अपनी युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उसी प्रकार से उससे बातें की, तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी हो। ऐसे उसने 2 दिन ये प्रयोग किया। 3रे दिन उनके सेंटर पर ड्रामा अनुसार योग की भट्टी थी, तो उसने सोचा कि आज योग की भट्टी है तो योग की भट्टी में तो जाना है, और मैंने 2 दिन तो प्रयोग किया ही शुभ भावनाओं का, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा, तो युगल से पूछ के देख लेता हूं, जैसा जवाब मिलेगा उससे पता चल जाएगा कुछ हुआ असर या नहीं। तो गया युगल के पास और कहने लगा, देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्टी है और यदि आप कहो तो मैं जाऊं। हां हां भले जाओ। जो रोजाना इतना विरोध करती थी वैसे छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से तैयार बैठी। कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन? उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे मन की शुभ भावनाओं। एक छोटा सा मेरा स्वयं का भी अनुभव। एक बार हम नांदेड़ और पूना गए थे भट्टी कराने, तो उसी समय हमारे एक साथ वाले भाई ने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना लिया। अब एक ही डिपार्टमेंट से एक साथ 2 भाई बाहर जाएं तो यहां की सेवा में थोड़ा कमी आती है, तो मैंने उसको कहा भाई हो सके तो आप मेरे आने के बाद जाओ, नहीं नहीं मेरे को अभी जाना है, कुछ भी करो किसी को भी रखो। मैंने काफी समझाया लेकिन वो नहीं माना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो, ऐसा करके छोड़ दिया। और 2रे दिन अमृत वेले योग में उसको सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उसी इसी प्रकार से बातें की, देखो तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। और देखो मैंने कहा मेरे मन में आपके प्रति बहुत शुभ भावनाएं, आप जरूर दिल्ली जाओ, अच्छी तरह घूम के आओ, लेकिन मेरे आने के बाद जाओ ताकि यहां दोनों का काम भी हो जाए और बाबा की सेवा भी ठीक चलती रहे। ऐसा मैंने सूक्ष्म में इमर्ज कर उससे 2 दिन अमृत वेले योग में बातें की। और 3रे दिन उसको पूछा भाई आप दिल्ली तो जा रहे हैं लेकिन आपकी वापसी आने की डेट कौन सी है? तो कहता है कि मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो इस प्रकार से आप भी इस शुभ भावनाओं का प्रयोग से अनेक आत्माओं की नेगेटिव मनोवृत्तियों को बदलकर और अपने स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हमको दूसरों से शुभ भावना युक्त व्यवहार मिलेगा तो फिर हम जो चाहते हैं वैसी स्थिति बनाना हमारे लिए सहज और सरल हो जाएगा। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम बातों को महत्व नहीं, बाबा और उसके ज्ञान को महत्व देकर चलें। देखो, अनेक आत्माओं का, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है अनेक आत्माओं के साथ, तो बातें तो आएंगी, क्योंकि वो सब हिसाब किताब यहीं चुप तो करना है। भले आपका दोष नहीं है, फिर भी आपको दोषी बनाया जाएगा, कोई उल्टा सीधा बोल देगा, कोई डिसरिगार्ड कर देगा, तो क्या होता है, ऐसे व्यवहार को देखकर हम उसकी बात कोई पकड़कर बैठ जाते हैं कि इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों कहा, ये ऐसे क्यों करते हैं, मैंने ये काम नहीं किया, फिर भी मेरे पर ऐसा क्यों आरोप लगाया जा रहा है। नेचुरल गलत व्यवहार को देखकर संकट चलते हैं ज्यादातर लोगों के। तो जहां हम बातों को महत्व देते हैं, तो कई भाई बहने क्या करते हैं, जब किसी ने ऐसे कोई झूठा आरोप लगा दिया, कोई बात कह दी, तो उस बात को ही पकड़कर बैठ जाते हैं कि इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों कहा। अब दूसरे को तो बदलना आपके बस की बात नहीं जब तक वो आत्मा ना चाहे, और समय तो ऐसा ही पूरा होने को जा रहा है। यदि हम उस बातों को ही पकड़कर बैठे रहे तो एक बहुत वैल्यूएबल समय को ऐसे ही वेस्ट गवा देंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हम बातों के जाल में ना जाएं, क्योंकि बाबा ने कहा, एक बच्चे तुम्हें किसी बात के कारण में नहीं जाना है, हर बात का निवारण करके चलना है, समस्या को सामने नहीं रखना लेकिन समाधान स्वरूप बन के चलना है। क्योंकि बाबा ने हमको हर प्रकार की नॉलेज ज्ञान दिया हुआ है, उसका हम प्रयोग कर चलें। तो जहां हम बातों को महत्व देते हैं तो वहां कैसे स्थिति हलचल में आती है, और जहां बाबा और उसके ज्ञान को महत्व देकर चलते हैं तो कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक युगल थे और एक उनका बच्चा था, तीनों ही ज्ञान में चलते थे, तीन ही थे उस परिवार में, बहुत ही अच्छे ज्ञानी योगी पुरुषार्थी, आत्मा घर का वातावरण भी बहुत अच्छा था। तो चलते चलते वो माता के मन में एक प्रश्न उठने लगा कि हम बूढ़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा, घर को कौन संभालेगा, तो घर में बहू होनी चाहिए। तो लड़का बड़ा था तो लड़के को बोला, बेटा आप शादी करो। लड़के ने मने कर दिया, क्यों, तीनों ही ज्ञान में चलते थे, मने कर दिया। तो एक बार कहा, दो बार कहा, मने कर दिया, तो तीसरी बार माताजी कहती है कि यदि आप शादी नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। देखो ये ज्ञानी माता होती है। तो यही बात माताजी जब दो तीन बार बोली तो फिर लड़के का संकल्प चलने लगा कि मेरे कारण माताजी आत्महत्या करे तो ठीक नहीं है, चलो माताजी ने इतनी पालना किया, बड़ा किया, योग बनाया, तो माताजी की बात मान लेते हैं। तो लड़के ने शादी कर ली। तो जो शादी कर ली तो जो घर में बहू आई वो बहुत ही तेज और तराट, बस उसी दिन से सास बहू का लड़ाई झगड़ा शुरू, रोजाना का लड़ाई झगड़ा होने लगा। माताजी बड़ी परेशान। तो लड़के को बोला, बेटा आप इसको समझाओ। तो बेटा कहता है, माताजी मेरे को तो बहू की जरूरत थी ही नहीं, बहू तो आपको चाहिए थी, अभी आप उसका सुख लो, क्योंकि उसने जबरदस्ती कह के शादी कराई। तो माताजी बड़ी परेशान, तो क्या करे। तो क्लास के बाद आपस में मिलते हैं तो किसी को अपनी समस्या बताई माताजी ने, भाई मेरे सामने ऐसे बड़ी समस्या आ गई, मैं क्या करूं। तो माताजी, किसी ने हमारा नंबर दे दिया, माताजी का फोन आया, भाई जी मेरे सामने ऐसे बड़ी समस्या आ गई, मैं क्या करूं, कोई समाधान बताओ। तो हमने माताजी को कहा कि वो, लेकिन ये जो बात मैं अभी बदला रहा हूं ये माताजी की बात नहीं, हम सबके साथ लागू होती है बात। आज हम सबके साथ जो भी अच्छा बुरा व्यवहार हो रहा है या समस्या परिस्थितियां आ रही हैं, हम कहने में तो कह देते हैं उन्होंने ऐसा किया तो ऐसे हुआ, वो मेरे सामने बहुत विघ्न डालते हैं, वो मेरे को बहुत तंग करते हैं, लेकिन बिना कारण के कुछ भी नहीं हो रहा है। इन सब बातों के पीछे हमारे कर्मों का हिसाब किताब जुड़ा हुआ है और वो वैसे ही चुकता होना है। तो हमने उस माताजी को बताया, देखो माताजी, जो आत्मा आपके घर में बहू बनकर आई है तो जरूर आपने किसी न किसी जन्म में आपने उसको तंग किया होगा, तो बदला लेने के लिए आपके पास आई है, क्योंकि बिना कर्म के हिसाब किताब के तो कुछ होता नहीं है ना। तो अब दो तरीके तो हिसाब किताब चुकतू करने के आप लोगों ने सुने होंगे अब तक। सबसे सुंदर तरीका तो है योग बल। साधारण योग से हिसाब किताब चुकतू नहीं होंगे, योग बल, शक्तिशाली पावरफुल योग, बीज रूप बिंदु रूप स्थिति का योग चाहिए, उससे हिसाब किताब चुकतू होंगे, उससे भी कर्म विनाश होंगे। और दूसरा है शारीरिक रूप में भोगना भोगना, या तो योग नहीं तो भोग। लेकिन एक तीसरा भी तरीका है, और वो तरीका यह है कि जो आत्मा आपको तंग कर रही हो, विघ्न डाल रही हो, तो उसको अमृत विलय योग में सूक्ष्म इमर्ज कर उससे मन ही मन माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। तो उससे भी कर्म का हिसाब किताब चुकतू होगा। सो माता जी को हमने कहा कि आप माता जी 7 दिन अपनी बहू को इमर्ज कर योग में और उससे क्षमा मांग लो, माफी मांग लो 7 दिन, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो माता जी ने ऐसे किया, अपनी बहू को सूक्ष्म इमर्ज कर उससे क्षमा मांगी, भाई मेरे द्वारा किसी भी जन्म में आपको दुख मिला, कष्ट हुआ, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना, माफ कर देना। और 8वें या 9वें दिन उसकी बहू माता जी के पास आती है और कहती है कि माता जी मैंने आज तक आपको बहुत तंग किया, दुख दिया, लेकिन आज के बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगी, हम दोनों मिलकर रहेंगे और सब कुछ ठीक हो गया। तो आप में से भी जिनके सामने कोई ऐसी परिस्थिति हो तो ये भी प्रयोग करके देख सकते हैं। और वास्तव में ज्ञान तो है, ज्ञान की बहुत सारी बातें हैं, प्रयोग हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए गहराई से तो योग ही सर्व समस्याओं का हल है। आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, उनके प्रभाव से मुक्त रहना चाहते हैं तो कम से कम, या माया जीत बनना चाहते हैं तो कम से कम अपने योग के चार्ट को एक दिन का 4 घंटे का अवश्य बनाएं, तब आप कहीं विघन परिस्थिति समस्याओं के लेवल से ऊंचे उठ जाएंगे तो आपको परिस्थितियां प्रभावित नहीं करेंगे। एक छोटा सा अनुभव, एक माता मेरे पास आई, हमारी आंगन में सिक्योरिटी की ड्यूटी होती है, तो बैठे थे। माता जी आकर बोलने लगी, भाई जी मेरे सामने ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या है, मैं क्या करूं। 8-10 समस्याएं गिना दी। तो मेरे को कहीं बाहर जाना था उस दिन, तो मैंने कहा माता जी मैं बाहर जा रहा हूं भट्टी कराने के लिए, तो आप ऐसा करो कि आप 5 दिन के अंदर मैं आ जाऊंगा, 5 दिन के बाद आप मेरे से मिलना। तो मैं बाहर चला गया और तब तक आप क्या करो, माता जी को मैंने बताया कि तब तक आप क्या करो, 5 दिन 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते योग कर लो रोजाना, एक दिन में 4 घंटे योग करो रोजाना 5 दिन तक, और 5 दिन के बाद आप मेरे से मिलना। मैं बाहर चला गया, माता जी योग करती रही। 5 दिन के बाद जब वापस आया तो माता जी मिलने के लिए आई, तो पूछा, बोलो माता जी क्या समस्याएं हैं। तो माता जी कहती है, भाई साहब मेरी तो कोई समस्या ही नहीं है। तो समस्याएं कहां हैं, क्यों हैं, जहां हमारा योग बाबा से कम है अथवा नहीं है। तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएं तो सब समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। लास्ट पॉइंट, श्रेष्ठ बाप समान श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम, एक तो जो मैंने बताया, सदा ही अपने सिरे स्वमान में रहें, और दूसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, कहीं भी जाओ आओ कुछ भी करो 2 मिनट बाबा को याद कर कहो बाबा मैं फलानी सेवा पर जा रहा हूं आप भी मेरे साथ चलो और ये कार्य कराओ, तो आप वो अनुभव करेंगे जैसे कि कोई व्यक्ति किसी का साथी बनकर साथ दे रहा है, वैसे भगवान हमारा साथी बनकर साथ निभाता है। और जहां सर्वशक्तिवान साथी बन के साथ दे रहा हो तो वहां अनेक असंभव कार्य संभव होते चले जाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा ही, एक बच्चे कोई विघन परिस्थिति आपके सामने आए, यदि तुम दिल से याद कर मुझे कहेंगे कि प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ मदद करो, तो बाबा तुरंत तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। याद है ना बात, तो बाबा कहता नहीं लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव करवाता है। एक छोटा सा अनुभव, एक बार हमको बॉम्बे जाना था भट्टी कराने के लिए, और 15 दिन पहले प्रोग्राम फाइनल हुआ। अब 15 दिन में तो रिजर्वेशन क्या मिलेगा। फिर मैंने भाई को बोला जो रिजर्वेशन कराता, भाई तत्काल में ट्राई करना, तो उसने तत्काल में ट्राई किया लेकिन रिजर्वेशन नहीं हो पाया। अब तत्काल में नहीं हो पाया तो और क्या साधन है। तो मैंने कहा भाई, मैंने उसको कहा भाई कुछ भी करो, भाई वहां 8 दिन का प्रोग्राम अनाउंसमेंट हो गया है और क्या हो सकता है वो आप जानो, लेकिन आप कोशिश करो। तो वो कहता है कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, आप रात को 8:30 बजे मेरे से फोन करके बात करना, मैं ट्राई करूंगा, फाइनल नहीं कह सकता। तो मैंने कहा ठीक है, आप उधर ट्राई करो, हम बाबा से ट्राई करते हैं। तो मैं बाबा के कमरे में गया और मैं इस दिल से बाबा को याद कर कहा, बाबा देखो आपकी श्रीमत से प्रोग्राम बनाए और सेवा कराने वाले आप, और मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, और मुझे बॉम्बे जाना है भट्टी कराने, आपने रिजर्वेशन करवाना है। ऐसे एक अधिकार के रूप में बाबा को दिल से याद कर कहा। 15 मिनट योग करने के बाद बाबा से टचिंग मिलती है कि बच्चे रिजर्वेशन हो गया है, S3 में 26 नंबर सीट है। और उसके बाद रात को 8:30 बजे सुबह को फोन किया, मैंने कहा भाई कुछ हुआ, तो वो भी यही कहता है कि रिजर्वेशन हो गया है, S3 में 26 नंबर सीट है। तो यदि हम बाबा को साथी बनाकर चलते हैं और हर कदम उसकी श्रीमत अनुसार करके चलते हैं तो निश्चित रूप से जो आप संकल्प करेंगे वही होगा। इसलिए कभी अपने मन में कमजोर अथवा नेगेटिव विचारों को नहीं आने दें। अब बातें तो बहुत हैं, अनुभव भी बहुत हैं, लेकिन अभी समय होने को आया है तो हम पूरा करते हैं, बाकी तो कभी चांस मिलेगा तो फिर सुना सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। योग के प्रयोग कैसे करना है सुना, करेंगे? परिस्थिति तो आएगी, लेकिन हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिमान, और मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे परिस्थिति पेपर टाइगर है। जैसे जैसे छोटेलाल भाई सुना रहे थे, मुझे भी मेरी भूतकाल की स्मृति आ रही थी कि कैसे अगर हम एक स्वमान में टिकते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। इसलिए सभी आप ये प्रयोग करना। अगर गाइडलाइंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, एक बार एक संकल्प आया, 2012 की बात है, सुख शांति भवन के क्लास में मैंने बताया कि क्यों ना हम, बाबा कहते हैं नई आत्माओं को जन्म दो, तो हम ये कुछ कार्यक्रम करें। तो सवेरे योग के पश्चात ट्रैफिक कंट्रोल का गीत पूरा 10 मिनट हम लोगों ने आह्वान का योग शुरू किया, और उस आह्वान के योग में एक मास 10 मिनट का योग था। वो आह्वान माना अहमदाबाद के ऊपर जो एरिया है हमारा, उसके ऊपर खड़े होकर पूरे क्लास के साथ बाबा को भी नीचे बुलाया, बाप दादा को, और हम सूक्ष्म शरीर से आह्वान करते रहे। एक मास के बाद टोटल 4 पाठशाला खुली और 4 भाई बहन रेगुलर हुए, वो यहां बैठे हैं। तो एक मास के प्रोग्राम से, अगर आह्वान के प्रोग्राम से अगर आत्माओं का जन्म हो सकता है, तो कितनी सारी बातें योग के प्रयोग से सफल हो सकती है। भाई साहब का हम तहे दिल से थैंक्स कहते हैं।